पिछले दो रविवारों से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर चर्चा प्रारंभ की है। पहला प्रसंग दक्ष प्रजापति की कथा को कह रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शिवजी का अपमान किया पहले यज्ञ में और फिर शिवजी के अपमान के बाद वहां से चले गए, एक दूसरा यज्ञ किया जब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया और फिर उस दूसरे यज्ञ में शिवजी को बुलाया नहीं। सती कहने लगी शिवजी से कि जाना चाहिए, पिता हैं, भूल गए होंगे, अपने पिता के घर, मित्रों के घर, सुहृदों के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शिवजी ने बहुत समझाया कि हाँ, बिना बुलाए तो जा सकते हैं, लेकिन जहां अपमान की भावना हो, विरोध हो, द्वेष हो, वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे शिवजी का जब अपमान हुआ तब से लेकर काफी समय तक शिवजी ने सती देवी को बताया नहीं था कि यज्ञ में क्या हुआ, कैसे उनके पिता ने अपमान किया। लेकिन अब जब दूसरे यज्ञ में जाने के लिए सती तैयार हुई तब शिवजी को कहना पड़ा कि वहां ठीक नहीं होगा, अपमान हो जाएगा। फिर भी सती की बड़ी इच्छा थी, बहुत समझाया। शिवजी ने इतना भी कहा कि वहां जो तुम्हारा अपमान होगा तुम उसको सहन नहीं कर पाओगी और आत्महत्या कर लोगी। शिवजी ने ये पहले से ही भविष्यवाणी की, लेकिन सती मानी नहीं। फिर शिवजी ने कहा ठीक है, आप चली जाइए। तो वो ऐसे ही चल दी। तो जब शिवजी के गणों ने देखा कि अकेले ही जा रही हैं, तो वे भी सब चल दिए साथ में। तो उस समय फिर वो पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि शिवजी के लिए जो हर एक देवता के लिए उसका हिस्सा रखा गया था, शिवजी के लिए कोई हिस्सा नहीं था। सती को दुख इसलिए हुआ कि दक्ष ने शिवजी का अपमान किया और जब सती आई तो उनसे बात भी नहीं की, उनका भी अपमान किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो सती को दुख ये था कि इतने महान देवता शिवजी की अगर पत्नी आ रही हैं तो कैसे उसका स्वागत होना चाहिए और यहां उनका अपमान हो रहा है। तो ये शिवजी का अपमान है और फिर शिवजी के लिए हिस्सा नहीं, शिवजी को बुलाया नहीं, कोई स्थान नहीं, अलग अलग देवताओं को आहुतियां अर्पण की गई, उनके उनके अपने हिस्से हुए, लेकिन शिवजी का कोई हिस्सा नहीं। तो सती को बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने अपने पिता को बहुत कुछ कह सुनाया और फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रकट की और उसमें वो भस्म हो गई। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने से पहले जो बातें उन्होंने अपने पिता से कही वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सुंदर संदेश उन्होंने दिए अपने पिता को कहते हुए। भागवत अगर हम पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सती अपने पिता से कह रही हैं ये बातें, वो कह भी रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन बातों में छुपे हुए संदेश को दे रही हैं, शिक्षाओं को दे रही हैं। इतना ही नहीं, सती की ये जो शिक्षाएं हैं, बहुत सी शिक्षाएं उन्होंने अपने वचनों के द्वारा उस समय दी अपने देह को समाप्त करने से पहले, और ये शिक्षाएं एक भक्त के लिए भक्ति में आगे बढ़ने की जो आने वाली बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए, ये शिक्षाएं उसको प्रदान करती। तो बहुत महत्वपूर्ण सती देवी के द्वारा शिक्षाएं दी गई हैं। देखिए, जो महान भक्त होते हैं, भगवान के जो महान व्यक्ति होते हैं, वो कभी अपने आचरण से, कभी अपने शब्दों से, या फिर कभी किसी अन्य तरीके से भगवान की भक्ति के महत्व को समझाते हैं, ऐसे ऐसे निर्देश देते हैं, ऐसे ऐसे संदेश देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आचार्य इन संदेशों को प्रकट करते हैं। जैसे आप अगर भागवत पढ़ेंगे, इस प्रसंग को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि एक पुत्री अपने पिता को डांट रही है या अपने पिता से कुछ क्रोध में कह रही है, बस इतना ही। लेकिन आचार्य इनकी शिक्षाओं को प्रकट करते हैं। अगर ध्यान से इन शब्दों को देखा जाए तो सती देवी ने इतनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं कि अगर हम उनका पालन करें तो निश्चित है कि भक्ति में प्रगति करेंगे। ये जो पूरा प्रसंग है दक्ष का, इसकी प्रमुख शिक्षा तो है ही कि हमें कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें किसी महान व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही अपने मान की कामना होनी चाहिए। लेकिन सती देवी ने जो शिक्षाएं दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज उन शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे उन सारी शिक्षाओं को आज कह सकें, क्योंकि भक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भक्ति नहीं भी करना चाहते, भक्त नहीं बनना चाहते, समर्पण नहीं करना चाहते, तो भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कम से कम जीवन में सुखी तो रहना चाहते हैं ना, तो जीवन में सुखी रहने के लिए भी ये शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और फिर उनके लिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये मोती है, मोती जो सती देवी ने अपने जीवन के सारे शिक्षाओं को, जो उन्हें शिवजी से मिले थे, सार के रूप में प्रस्तुत किया। साधारणतः ऐसा होता है कि जब कोई महान व्यक्ति, महान आचार्य, महान भक्त अपने देह को त्यागते हैं, तो अपने जीवन की सारी शिक्षाओं को सार के रूप में दे देते हैं। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, जब वे अपना देह त्याग रहे थे तो उन्होंने 74 उपदेश दिए, 74 इंस्ट्रक्शंस अपने भक्तों को, और उनमें उनकी सारी शिक्षाओं का जो जीवन भर उन्होंने प्रचार किया उसका सार था। श्रील प्रभुपाद, वे जब अपना देह त्याग रहे थे तो उस समय उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो उनके सारे जीवन के प्रचार की शिक्षाओं का सार था। जैसे श्रील प्रभुपाद ने समझाया, उस समय जब वो बस कुछ ही दिन और इस पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने समझाया कि जो ये जान जाता है कि सब कुछ कृष्ण का है, वो कृष्ण भावना भावित है। बड़ा सरल वाक्य, लेकिन बहुत गहन शिक्षा। सुनने में बड़ा सरल है ये जानना कि सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन पालन करने में बहुत कठिन है। और प्रभुपाद ने एक ही वाक्य में सारी भक्ति, कृष्ण भावनामृत के सार को प्रकट कर दिया। कृष्ण भावनामृत क्या है? बस यही, कृष्ण की भावना में रहना, सतत कृष्ण को देखना, हर चीज को कृष्ण की मानना, बस यही कृष्ण भावनामृत है। तो इसी प्रकार सती देवी अब अपने देह को छोड़ने जा रही हैं और इस समय वो कुछ उपदेश देती हैं। तो सबसे पहले वो कहती हैं, वैसे वो अपने पिता को संबोधित कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि आपको बहुत अहंकार हुआ है। सब जीव तो समान होते हैं, समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति महान कहलाता है। तो सबसे पहली शिक्षा वो प्रारंभ करती हैं पहले ही श्लोक में, कि वो कहती हैं कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अपने जीवन में हम लोगों को समान दृष्टि से नहीं देख पाते, किसी को शरीर के स्तर पर देख लेते हैं, किसी को जाति के स्तर पर देख लेते हैं, किसी को समाज और किसी को राष्ट्र के स्तर पर देख लेते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाकेचा पंडिता समदर्शिनः। भगवान कहते हैं पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, विद्या किसके पास है और सही विद्या क्या है। विद्या विनय संपन्ने, जिस व्यक्ति के पास विद्या है वो नम्र हो जाता है और उस नम्रता से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति हो, वो सबको समान देखता है। भगवद गीता का प्रारंभ इससे होता है। भगवद गीता प्रारंभ में ये सिखलाती है कि हर एक जीव में, जिसमें भी जीवन आप देखें, फिर वो चाहे पौधा ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे छोटा सा पशु क्यों ना हो, फिर वो चाहे बहुत बड़ा पशु क्यों ना हो, शेर क्यों ना हो, गाय क्यों ना हो, या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, हर पशु में भगवान का एक अंश है और वो है आत्मा। ये प्रारंभ है भगवद गीता की शिक्षाओं का। जब अर्जुन को भगवान भगवद गीता बताना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं कि हरेक में आत्मा है। ये शरीर ये तो बाहरी पहनावा है, तो कैसे हम सबको समान देख सकते हैं जब उस भगवान के पवित्र अंश आत्मा को सब में देखें, तब हम समान देख सकते हैं। जब हम जाने कि हर कोई भगवान का भक्त है, इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान का भक्त नहीं है, फिर वो चाहे पशु हो, फिर वो चाहे बहुत निम्न स्तर का पशु हो, पेड़ हो, पौधा हो, लेकिन वो भगवान का भक्त है। क्यों? क्योंकि आत्मा मूल स्वरूप में भगवान की दास है, भगवान की भक्त है। तो ये पहली शिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सती देवी देती हैं, कि हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए और समान रूप से देखने के लिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, अनिवार्य है। हम ये जाने कि हर एक शरीर में, शरीर अलग हैं, कपड़े अलग हैं, लेकिन आत्मा एक ही प्रकार की है, आत्मा एक है। सारी दुनिया में लोग प्रयास कर रहे हैं शांति लाने का, कहीं पर युद्ध हो जाते हैं, कहीं पर आतंकवाद फैला है, आप यहां बड़े शांति से बैठे हैं, लेकिन जान लीजिए दुनिया के कई हिस्सों में इस समय अग्नि फैली हुई है, आग लगी हुई है, युद्ध हो रहा है, आतंकवाद है, लोग अपने को बचाने के लिए भाग रहे हैं, लोगों को बंदी बनाकर रखा जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं, आज भी इस समय भी कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, शांति नहीं है सारे दुनिया में। तो शांति का सूत्र क्या है? क्यों हम झगड़े करते हैं, क्यों हम एक दूसरे से युद्ध करते हैं? आत्मा के विषय को भूल जाते हैं या नहीं जानते, अज्ञान। इसलिए जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर युद्ध करते हैं। तो ये पहली शिक्षा कि अगर हम जीवन में, कम से कम अपने जीवन में हम शांति लाना चाहते हैं तो हमें सबको समान देखना चाहिए। और फिर वो दूसरी शिक्षा देती हैं, वो आगे अपने पिता से कहती हैं कि आप शिवजी में दोष ढूंढ रहे हैं। वो शिव जो किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण देख लें तो उसको गुणगान कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति में आप दोष देख रहे हैं। ये दूसरी शिक्षा है सती देवी की। सती देवी समझा रही हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें, एक दूसरे से आचरण करें, भक्ति करें, कोई भी कार्य जीवन में करें, तो दो चीजों को याद रखें। पहली, हमें दोष देखना बंद करना चाहिए, और दूसरी, व्यक्ति के छोटे से गुण को भी हमें बहुत महत्व देना चाहिए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। दोष देखने की प्रवृत्ति हम सब में है। दरअसल दोष देखना बड़ा सरल है। मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं, उसने अपने घर को अभी अभी पेंट किया है और थोड़ा सा हिस्सा उसने छोड़ दिया, पूरी दीवार को पेंट कर दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, आप क्या देखते हैं? हाँ, आप उसके घर में उसे बहुत अच्छी दीवार को पेंट किया, एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया, आप क्या देखेंगे? सच बताइएगा ईमानदारी से। हाँ, जो हिस्सा छोड़ा है उसको देखेंगे, इतनी बड़ी दीवार उसने अच्छी पेंट की है वो नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले यही पूछेंगे, ये हिस्सा क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ यहां पर, है ना? ये हमारी आदत है। कोई हमें बनाकर बहुत स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अब मान लीजिए उसमें उन्होंने नमक ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो जैसे ही हम उस भोजन को मुख में डालते हैं, क्या हमारे मन में आता है, क्या हमारे मन में आता है कि इस व्यक्ति ने 2 घंटे लगकर बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, या हमें आता है क्या बनाया है ये, इतना नमक डाल के रख दिया? आप सच सच बताइए क्या मन में आता है? हाँ, ऐसे बोलने को चुपचाप खाना पड़ता है। प्रभु जी को बहुत अनुभव हो गया है कई वर्षों का, और इसीलिए अब इतने वर्षों बाद इतनी हिम्मत हुई है कि सबके सामने बोल सके हैं इसको। लेकिन जो यहां अभी कम अनुभवी लोग बैठे हैं, अभी तक उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रभु जी अकेले हैं, बाकी जो यहां बैठे हैं उन उधर भी कोई और बैठे हैं, तो इन सबको भी घर पे जाना है, और खैर आगे नहीं बोलेंगे आप सबके लिए, किसी के दुख की बात ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए। तो जैसे हम खाते हैं तो नमक ज्यादा, हमारे मन में क्या आता है पहली चीज, ये क्या खाना बनाया। हाँ ठीक है, आप बोल नहीं पाते, वो अच्छी बात है, अच्छी है या बुरी है वो आप जाने, लेकिन बोल नहीं पाते, मगर मन में तो यही आता है। हमारे मन में ये नहीं आता कि इस व्यक्ति ने, जिसने भी ये बनाया है, 2 घंटे लगकर बनाया होगा, हो सकता है डालने में थोड़ा बहुत नमक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो क्योंकि हमारा सारा ध्यान उनकी गलतियों पर होता है, तो गलतियां ढूंढना बड़ा सरल है, लेकिन जहां प्रेम है वहां गलतियां नहीं ढूंढी जाती। आपका छोटा सा बच्चा पहली बार ड्राइंग बनाकर लाता है, एक पेड़ बनाता है, पेड़ से बड़ा फूल बना देता है, है ना? बच्चा बनाता है, छोटा सा पेड़ बनाता है, फूल बनाता है वो उससे बड़ा। अब आपने कहीं ऐसा देखा है कि पेड़ है और पेड़ से बहुत बड़ा फूल है, लेकिन आप उस बच्चे की ड्राइंग देखते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा, वेरी नाइस, है ना? आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको गुणगान, क्यों? क्योंकि प्रेम है और हम बच्चे को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसीलिए जहां प्रेम उत्पन्न करना है वहां ये दोष देखना बंद करना चाहिए। हम लोग बड़ी सरलता से दोष देख लेते हैं, आदत है, हमें अच्छा लगता है। वैसे कई लोगों के लिए ये बहुत अच्छा खेल है, फेवरेट स्पोर्ट। कुछ लोगों का खेल अलग अलग होता है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को वॉलीबॉल अच्छा लगता है। हम में से ज्यादा लोगों को दोष ढूंढना अच्छा लगता है। तो ये दोष, तो यहां पर सती देवी कह रही हैं कि हमें दोष ढूंढने की प्रवृत्ति से दूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम दोष ढूंढते हैं तो हमारे संबंधों में नकारात्मक चीजें आ जाती, संबंध अच्छे नहीं रह पाते, आप हमेशा आपको आदत हो जाती है दोष ढूंढने की, जो चीज आप देखें उसमें दोष। तो प्रश्न ये आता है क्या कभी गलत चीज को देखना ही नहीं चाहिए? आप किसी के घर में गए हैं, उसने वो छोड़ा है एक जगह, तो क्या हमें पूछना भी नहीं चाहिए भाई किस लिए छोड़ा है, क्या महत्व है इसका, या कोई वास्तु के कारण छोड़ा है या क्या किया है, कुछ तो पूछना चाहिए। तो क्या हमें पूछना ही नहीं चाहिए? नहीं, पूछना चाहिए, लेकिन दोष ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं बनानी चाहिए, हमारी वो आदत नहीं हो जानी चाहिए कि हर चीज में हम दोष ढूंढे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे जब होता है तो हमारे संबंध खराब होते हैं। कोई व्यक्ति हमें अपने पास रखना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो जानता है ये व्यक्ति हर चीज में दोष ढूंढेगा। आप कुछ अच्छी चीज बनाकर लाओ, इसमें यह है, आप कोई अच्छा कार्य करो, इसमें ये गलती है, तो फिर धीरे धीरे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दोष ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, इससे दूर जाना चाहिए। इसके द्वारा माता पिता अपने बच्चों को भी ठीक से पाल नहीं पाते हैं, अगर माता पिता में ये दोष ढूंढने की प्रवृत्ति है। क्यों नहीं पाल पाते हैं? क्योंकि वे अपने हिसाब से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, जैसा मैं चाहता हूं। अगर बच्चा वैसा नहीं बड़ा हो रहा तो इसमें दोष है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा अमेरिका जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, अगर वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो उसमें दोष है। नहीं, बच्चे में दोष नहीं है, दोष आपके मन में है, क्योंकि आप उस अपने हिसाब से बच्चे को बड़ा करना चाहते हो। ऐसा नहीं है, हो सकता है बच्चे में कोई म्यूजिक का टैलेंट हो, लेकिन हम उसे जबरदस्ती बचपन से कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो बेचारा इतना परेशान हो जाए कि डॉक्टर शब्द सुनकर अपने प्राण त्याग दे, लेकिन डॉक्टर नहीं बने कभी। इतना हम लोग उसको तंग कर देते हैं। हो सकता है उसमें कुछ संगीत का अनुभव हो, संगीत के लिए इच्छा हो, आप उसको बढ़ने ही नहीं देते, नहीं बस मैंने कहा डॉक्टर, और जबरदस्ती उसको साइंस कराते हैं, 2 साल की जगह 8 साल में वो 12वीं पास करता है, फिर उसको पैसा देकर आप मेडिकल कॉलेज में डालते हैं, लाखों रुपया देकर वो 5 साल की जगह 15 साल वहीं का प्रोग्राम बना देता है, और आप फिर भी पास नहीं हो पाता, अंत में आप पैसा देकर उसकी डिग्री खरीदते हैं, क्या लाभ है? इससे अच्छा अगर उसने उसको अपने बचपन से उसके संगीत में लगाया होता, क्रिकेट में लगाया होता, लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्रिकेट में लगाया होता तो कहां चला जाता बच्चा, जो उसका टैलेंट है। हो सकता है कि उसको भक्ति का शौक हो, उसने कभी जीवन में भगवत गीता उठाई हो और आपने मना कर दिया हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, डॉक्टर बनो पहले, अब वो कभी जीवन में डॉक्टर बन नहीं पाया, हो सकता है भगवत गीता पढ़ता तो अच्छा भक्त बनता। तो ये चीजें हैं ये दोष ढूंढने की। इसलिए जान लीजिए कि दोष व्यक्ति में नहीं होता, दोष ढूंढने वाले के मन में होता है, हमारे मन में है, हमें देखने की आदत है दोष, इसलिए हम दोष देखते हैं हरेक में। अगर जिस व्यक्ति को दोष देखने की आदत नहीं है तो वो फिर दोष नहीं देखता। भक्तों में भी आचार्यों ने श्रेणियां बनाई हैं। एक भक्त होता है जो बड़ा निम्न स्तर का है, वो केवल भगवान को जानता है और अपने आप को बस, बाकी सब में दोष देखता है। दूसरा व्यक्ति कुछ में दोष देखता है, कुछ में नहीं देखता, लेकिन जो सर्वोच्च स्तर का भक्त है वो किसी में दोष नहीं देखता। तो ये दोष देखने की प्रवृत्ति हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसीलिए यहां सती देवी कह रही हैं कि हमें दोष ढूंढने की प्रवृत्ति से दूर जाना है, और शिव जी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि वो किसी का एक गुण देख लेते हैं तो उसको बहुत बढ़ाकर चढ़ाकर बताते हैं। तो क्या हमारे अंदर इतनी कमी है, हम इतने हमारे अंदर इतने दोष हैं कि हम किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण नहीं देख सकते? अगर ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण नहीं देख सकते तो ये आपका दोष है, दूसरों का दोष नहीं है, ये आपके अंदर। इसलिए दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष देखने चाहिए। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलता जिसके अंदर, क्या हमारे अंदर एक अच्छाई देखने का भी क्षमता नहीं है? साधु वो है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, साधु वो है जो एक अच्छाई को देखकर बहुत गुणगान कर देता। श्रील प्रभुपाद एक समय प्रवचन कर रहे हैं, एक व्यक्ति आता है, लाल लाल आंखें, दिखने से ही पता चल रहा है शराब पिए हुए, ड्रग्स लिए हुए हैं, लड़खड़ा रहा है, खड़ा हो जाता है आके यहीं प्रभुपाद के पास एकदम। सारे भक्त सोच रहे क्या करें, लेकिन प्रभुपाद कुछ नहीं कहते। वो आता है और एक टिश्यू पेपर जो टॉयलेट में यूज किया जाता है, टॉयलेट पेपर, उसका एक बंडल रख कर चला जाता है। टॉयलेट पेपर क्या है वो, जिससे आप जानते हैं पाश्चात्य जगत में लोग बड़े स्वच्छ रहते हैं। वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते, पानी बचाते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं। एक बार हमने एक व्यक्ति के टी शर्ट पर देखा था, उसने लिखा हुआ बहुत बड़ा बड़ा, सेव वाटर। हमें बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह, ये यंग अवस्था में, युवा अवस्था में ऐसा प्रचार कर रहा है कि पानी को बचा, सेव वाटर, और नीचे लिखा था ड्रिंक बियर। तो पाश्चात्य जगत में ये बहुत है, वो लोग बहुत बचाते हैं। तो वो शौच आदि में जाने के बाद पानी का कम इस्तेमाल करते, बस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपने आप को बड़े साफ लोग कहते हैं, पता नहीं कैसे साफ रहते हैं। इसीलिए पाश्चात्य जगत में सबसे अच्छे परफ्यूम मिलते हैं। आप जानते हैं पाश्चात्य जगत में सबसे अच्छे परफ्यूम क्यों मिलते, भारत में नहीं मिलते? जरूरत नहीं है भारत वालों को, सरल है, हम लोग रोज नहाते हैं, कम से कम दो या तीन बार दिन में एक बार तो रोज नहाते ही हैं, है ना? पाश्चात्य जगत में तो ऐश्वर्य है अगर नहाना रोज। भागवत में लिखा गया है, आगे चल के कलयुग में ऐसा ही होने वाला है कि अगर एक बार व्यक्ति नहा लिया तो उसको पवित्र माना जाएगा। देखिए ये होगा कलयुग का असर, कैसा कलयुग आने वाला है, सोचिए। आप लोग रहना चाहते हैं उसमें? और उसका प्रमाण आज भी हम लोग देख सकते हैं, पाश्चात्य जगत में लोग कई कई दिन नहीं नहाते हैं, खास करके फ्रांस में, क्योंकि वहां के परफ्यूम सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? देखिए जहां आवश्यकता होती है वहीं चीज बनती है, भारत में आवश्यकता नहीं है, लोग नहा धोके एकदम साफ सुथरे रहते, कोई बदबू नहीं आती। वहां पर तो लोग पता नहीं महीनों तक शायद नहीं नहाते, कई दिनों तक, तो उनके शरीरों से बदबू आती, इसलिए उनको अच्छे परफ्यूम चाहिए। पूरा सुबह बस निकलते परफ्यूम मारते चले जाते हैं, और लोग सोचते हैं वाह कितने अच्छे शरीर से, कितनी अच्छी सुगंध आ रही। सुगंध नहीं है वो, तो क्या कहना चाहिए। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, हम लोग क्यों आ गए? ये कहां परफ्यूम पे चले गए, सारा भक्ति का वातावरण पूरा सब खराब हो गया। देखिए कितने अच्छी बातें चल रही थी, सती देवी का प्रसंग था और शिव जी की बात हो रही थी कि गुणगान करें, कहां हम लोग दूसरे देश में चले गए, परफ्यूम गंदगी है। तो बात ये हो रही थी कि हमें गुणगान हमें बढ़ाना चाहिए, किसी की एक हम अगर अच्छे गुण को देख लें तो उसको बहुत बढ़ाकर बताना ये गुण है। तो इसीलिए ऐसे चीज को हम लोग, तो प्रभुपाद के बारे में हम बता रहे थे कि वो व्यक्ति आया, उसने टॉयलेट पेपर रखा और वो चला गया, और प्रभुपाद ने क्या कहा, हम ये बता रहे थे कि जो महान आचार्य होते हैं, महान लोग होते हैं, वो कैसे देखते हैं। तो सब लोग को बड़ा गुस्सा आ गया, स्वाभाविक है, इतने बड़े आचार्य वो प्रवचन कर रहे हैं, आके उनके सामने टॉयलेट पेपर रखकर चले जाना। प्रभुपाद ने कहा देखो कितना अच्छा सेवा भाव है इसका, कुछ तो लेकर आया ना भगवान के लिए, अच्छा भाव है। ये आचार्य क्या किए, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा क्या व्यक्ति है ये कोई लाने की चीज है भगवान के पास, अरे भगवान के पास आना है, फूल लाना चाहिए, फल लाना चाहिए, अन्न लाना चाहिए, नहीं। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी सेवा की, ये सेवा भाव है, ये भगवान के लिए कुछ लेकर आया। तो ये हमें चाहिए, सती देवी ये सिखला रही है कि पहली चीज आप बंद कीजिए दोष देखना, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, लोगों के गुणों को देखिए और उन्हें बहुत बढ़ाकर बताइए। देखिए कभी कभी किसी का गुणगान करने से व्यक्ति को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें कुछ समय पहले किसी ने एक चीज भेजी थी, एक पत्र भेजा था, किसी का लिखा हुआ, एक टीचर थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था कि वो जब स्कूल में पढ़ाती थी तो बच्चे बड़े शैतानी वैतानी करते थे, तो एक विशेष बच्चे के बारे में बताया कि बहुत वो शैतानी करता, बहुत बोलता था। एक दिन उन्होंने कह दिया कि अगर अब तुम बोले तो तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दूंगी, और उसने फिर से बोल दिया। तो अब इन्होंने बोला था सबके सामने, तो जाकर टेप लगाना पड़ा, कि नहीं तो बच्चे कहते ना, बच्चे बड़े ध्यान रखते हैं ये सब चीजों का, ये तो बच्चे कहते टीचर आपने कहा था टेप लगाया, लगाया नहीं, तो उसने जाकर टेप लगा दिया। तो ऐसे वो लिख रही थी, काफी बड़ा था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि एक उन्होंने एक्सरसाइज की, सभी बच्चों को जितने बच्चे थे क्लास में उनको कहा कि आप अपने मित्रों के नाम लिखो एक पेपर पर। तो सभी बच्चों ने अपने अपने मित्रों के नाम लिखे अपना नाम छोड़कर। तो जैसे 40 बच्चे थे तो एक एक बच्चे ने 39 नाम जो थे वो लिखे एक एक पेपर पर। और फिर उन्होंने वो पेपर सबको बांटे और कहा कि इस पे आप सब बाकी बच्चों के लिए जो भी आप अपना छोड़कर जो भी सोचते हो उनके बारे में लिखो, अच्छी बात, एक अच्छी बात। तो हर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के लिए एक अच्छी बात लिखी। 39 बच्चों के लिए एक एक बच्चे ने अच्छी, इसका ये अच्छा गुण है, इसका ये अच्छा गुण है, इसका ये अच्छा गुण है। और फिर वो टीचर ने क्या किया, अब 39 बच्चों ने लिखा था तो एक एक बच्चे के लिए 39 बच्चों ने अच्छी चीजें लिखी थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक नाम लिया और जो भी अच्छी बातें सब बच्चों ने लिखी थी वो एक जगह लिख दी एक बच्चे के लिए। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि राजेश एक बच्चा है वहां पर, तो राजेश के लिए जो भी अलग पूरे 39 बच्चों ने जो जो कहा था, राजेश बहुत अच्छी तरह कपड़े पहनता है, राजेश बहुत अच्छी तरह श्लोक याद करता है, या श्लोक तो नहीं होंगे उस समय, जो भी है, तो वो सब लिखा था, तो वो सारी चीजें लिख दी। तो हर एक बच्चे के लिए 39 अच्छे गुण हो गए, अच्छी चीजें। और उन्होंने वो पेपर हर एक का एक एक पेपर बनाया और उनको गिफ्ट दिया कि ये तुम्हारे लिए। और हर एक बच्चे ने पढ़ा, अरे लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते मुझे पता ही नहीं था, इतना अच्छा सोचते हैं, सब खुश हो गए। तो बता रही थी कि उन्होंने लिखा पत्र में कि कई साल हो गए ऐसे, फिर ये अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका और वियतनाम की वॉर हो रही थी, वॉर में कई युवा जो सैनिक थे वो मारे गए और उनमें वो लड़का भी था जिसको उन्होंने पनिशमेंट दी थी, जिसके बारे में लिखा था। तो स्वाभाविक है उनके माता पिता ने उनको कहा आने के लिए, तो वे भी गई, तो उन्होंने देखा कि वो सब था। तो जब होने के बाद सब कुछ, उनके माता पिता ने बुलाया उनको, बोला हम आपको कुछ दिखाना चाहते। तो उन्होंने उसका पर्स दिखाया, उस सैनिक का जो मारा गया था युद्ध में, और उसमें वो ही पुराना पेपर फोल्ड करके टेप वेप लगाकर रखा गया था इतने साल। वो छोटा बच्चा था, अब वो सैनिक होकर मर गया तो भी उसने वो पेपर संभाल कर रखा था। तो उन्होंने दिखाया कि ये आपने दिया था ना, या उन्होंने बताया ऐसा, मुझे हमेशा वो बताया करता था। तो उन्होंने देखा वही पेपर था जिसमें उसका नाम लिखा था और उसके सारे जो मित्रों ने जो जो अच्छी बातें कही थी। और इतना ही नहीं, उसके और भी मित्र वहां पर थे, वो भी आए और उन्होंने भी दिखाया, हमने भी संभाल कर रखा है, हमने भी संभाल कर रखा। तो इससे वो समझा रही थी कि देखिए, थोड़ा सा अगर किसी का गुणगान या थोड़ा सा प्रेज, उसको हम अगर सराहना करते हैं तो कितना प्रभाव उनके ऊपर पड़ता कि उस सैनिक ने, उस बच्चे ने सैनिक बनने तक, मरने तक अपनी जेब में उसको संभाल कर रखा। यानी रोज देखते होंगे कुछ तो हो, तो सराहना करना कितना आवश्यक है। तो ये दूसरी शिक्षा सती देवी यहां पर दे रही हैं कि आप दोष ढूंढना बंद कीजिए और लोगों के गुणों को देखकर उसको बढ़ावा दीजिए। इसलिए हमारे पास जैसे ज्यादातर हमें लोग कौन पसंद हैं, हमें वो लोग पसंद नहीं हैं जो हमारी गलतियों को कहते हैं, सही है ना? आप कितना भी कह लीजिए लेकिन ये सत्य है, अगर कोई आकर आपके सामने आपको कहे ये आपकी गलती है, आप दिखावे के लिए मान लेंगे, हाँ हाँ आप जो कहते हैं सही है, लेकिन हृदय में आएगा ये मुझे समझा रहा है, इसको क्या पता कितना साल हुआ नेवी ज्वाइन करके ये जो भी है, ऐसा हो जाता है ना। या भक्ति में भी कितने साल हुए इसको जपा करते हुए, सामने पैंट में पहने देखा था, धोती कुर्ता पहन के मुझे सिखा रहा है। बाहर से हम कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ जो आपने कहा सही है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं, कोई भी हमारी गलतियों को आके बताए हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो दिखावा करते हैं हमारे सामने कि आपके अंदर कोई गलती है ही नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें ऐसे लोग। लोग आके गुणगान, बाबू जी आप तो क्या, आप तो महान हैं, आपका ये है, आपका वो है, आप इतने अच्छे ऑफिसर हैं, आप इतने अच्छे, हमें मालूम है वो झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर कोई सत्य बोल दे आकर, ये देखो आपकी ये गलती है, हृदय को लग जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। कोई भी हो, बस गलती नहीं बताना चाहिए, ये बदलना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें अपने पास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमारी निंदा करते हैं, अच्छा है वो, हमें कभी अहंकार नहीं होगा और वो हमारी गलतियां बताते रहेंगे। तो इसलिए दूसरी बात सती देवी कहती, बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिए, हमने उनके जो उनका संवाद है उनके पिता से या उन्होंने जो पिता को कहा उनसे 10 प्रमुख शिक्षाओं को निकाला है, आज पता नहीं समय हुआ तो सबको बोल पाएंगे। तीसरी शिक्षा वो बहुत महत्वपूर्ण देती है, वो अपने पिता से कहती है कि आपने शिवजी जैसे महान व्यक्ति के प्रति द्वेष किया, ये बहुत अच्छा है। सती देवी कहती बहुत अच्छा है ये आपने द्वेष किया, क्योंकि यही आपके पतन का कारण है, आपका तो निश्चित पतन होगा, ऐसा वो कह रही है। क्यों? क्योंकि आपने शिवजी जैसे महान व्यक्ति से द्वेष किया। तो ये तीसरी शिक्षा वो देती है कि हमें कभी भी महान व्यक्तियों से, विशेष करके जो भगवान के भक्त हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। शिवजी जैसे महान भक्त से द्वेष निश्चित पतनकारी। बहुत सुंदर तरीके से सती कहती है, हमने जब पहली बार पढ़ा हमें लगा शायद गलती से प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट है, हमने संस्कृत का श्लोक देखा कि ये गलत ट्रांसलेशन लिखा है। सती कैसे कह सकती है कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए द्वेष करना, द्वेष बहुत अच्छा है। हमने कहे तो कह नहीं सकती, लेकिन जब आगे पढ़ा तब पता चला क्योंकि इससे आपका पतन होगा। दूसरे शब्दों में सती कह रही थी कि जो भी व्यक्ति द्वेष करता है निश्चित उसका पतन, वो भी ऐसे महान व्यक्तियों से, शिवजी जैसे व्यक्ति से जो द्वेष करता है उसका पतन निश्चित है। और फिर वो कहने लगी चौथी शिक्षा, सती कहती है आपने कहा कि शिवजी राख लगाकर घूमते हैं, शमशान की राख, गले में खोपड़ियों की माला है, स्कल, उसको पहनकर घूमते हैं, ऐसे सब आप जानते हैं ना। दक्ष ने जब उनका अपमान किया था तो बहुत सारी बातें कह दी थी कि ये शमशान में रहने वाला, राख लगाकर घूमने वाला, गले में सांप डालकर घूमने वाला, इससे मेरी पुत्री का विवाह। और अगर उसके मन में किसी ने पूछ लिया होगा वहां पे, फिर तुमने विवाह क्यों किया, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि शिव जी ऐसे हैं, तो फिर उसने क्या कहा था याद है किसी को? ब्रह्मा जी, ये इनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं तो करना नहीं चाहता था, ब्रह्मा जी ने कहा। इसलिए अपने पिता को भी, उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, उनको भी उन्होंने अपमान कर दिया कि यही गलती, सारी गलती इनकी है, मूर्ख ब्रह्मा है, मैं नहीं हूं। अपने ही पिता को उस भरी सभा में उन्होंने मूर्ख बता दिया कि इनके कहने पर किया। तो दक्ष को कहने लगी कि आप कहते हो कि शिव जी राख लगाकर घूमते हैं या फिर वो ऐसे गले में माला डालकर घूमते हैं, आप जानते हो ऐसे लोगों का गुणगान, ऐसे लोगों का मान सम्मान ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा कौन है? तुम्हारे पिता हैं, दक्ष को कह रही है, अपने पिता से बात कर रही है। ब्रह्मा कौन है? तुम्हारे पिता हैं, और वो मान सम्मान देते हैं शिव जी को, वो कभी अपमान नहीं करते, उल्टा वो उनको प्रणाम करते हैं। और ये सत्य है क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। वैसे इस जगत में जब शिव जी आते हैं तो ब्रह्मा जी से आते हैं। भागवत में वर्णन है कि जब चार कुमारों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, हमने जब वराहदेव की कथा कही थी तो इसको कहा था कि जब चार कुमारों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले पुत्र, और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पुत्रों, जाओ तपस्या करो, बाद में विवाह करो और फिर संतान उत्पन्न करो। तो चारों ने क्या कहा, स्वीकार किया? चारों ने कहा अरे ब्रह्मा जी, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये आप क्या समझा रहे हैं हमें, कैसे पिता हो आप, जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, इसलिए विवाह तो छोड़ो, हम लोग बड़े ही नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ताकि बड़े नहीं होंगे आप विवाह करने के लिए नहीं कहोगे, संतान उत्पत्ति करने के लिए नहीं कहोगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया कि पहले ही पुत्र नालायक निकले, ऐसा होता है ना, आज भी होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का ब्रह्मचारी बनना चाहता है, हमें साधु बड़े पसंद हैं, कोई घर में आ जाए साधु तो हम उसको दंडवत प्रणाम करेंगे, कहीं रस्ते में मिल जाए तो पांव छुएंगे, डोनेशन देंगे, लेकिन हमारा लड़का साधु नहीं बनना चाहिए, वो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए। तो आज भी अगर कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो माता पिता यही कहते हैं, ये परंपरा चली आ रही है, नालायक कुछ कमाई करता, शराब पीता, जुआ खेलता, तो गर्व होता मुझे, मेरा बेटा अमेरिका में शराब पीता है, मैं गर्व से लोगों को कहता। ये साधु बन गया, सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया। आज भी लोग यही कहते हैं। हम जानते हैं एक भक्त को, जब वो ब्रह्मचारी बने तो उनके पिता ने यही कहा, मेरा बेटा शराब पिए, जुआ खेले, कोई चिंता नहीं, मैं पैसा दूंगा लेकिन ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी की परंपरा, गलती ब्रह्मा जी की है। आजकल के माता पिता को भी हम कुछ दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब उनके पुत्रों ने कहा हम ब्रह्मचारी बनेंगे, उन्होंने कहा नालायक है एकदम, ये लोग कैसे निकल गए। तो बड़ा क्रोध आ गया उनको, केवल इसलिए कि पुत्रों ने विवाह करने से मना कर दिया। बताइए, ये कोई क्रोध की बात है? कितने गर्व की बात। ब्रह्मा जी को गर्व होना चाहिए था कि मैंने ऐसे पुत्र उत्पन्न किए जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज भी समाज ऐसा है, कोई अगर ब्रह्मचारी बने, जीवन देना चाहे, बहुत दुर्लभ होता है। आप देखिए, हजारों लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति अपना जीवन भगवान के देने के लिए सोचता है और लोग उसका विरोध करते हैं। सारे समाज को उसका गुणगान करना चाहिए, देवताओं को फूलों की वर्षा करनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। भीष्म जब बने तो किया उन्होंने, है ना, कलयुग में नहीं कर रहे, या कर भी रहे होंगे, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसे कहा तो नाराज हो गए ब्रह्मा जी, क्रोध में आ गए। तो क्रोध के कारण उनकी भावों के बीच से एक बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ। रोता हुआ क्यों प्रकट हुआ? शायद इसलिए कि वो ब्रह्मा वो सोच रहा होगा कि देखो मैं कैसे प्रकट हो रहा हूं, मैं जीवन भर वैरागी रहने वाला हूं, त्यागी रहने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसे पिता से प्रकट होना पड़ रहा है। तो प्रकट होते ही रोने लग गया, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। रुद्र यानी जो खुद भी रोएंगे दूसरों को भी रुलाएंगे तो वो शिवजी थे। तो शिवजी ऐसे प्रकट ब्रह्मा जी से हुए हैं, लेकिन हैं उनसे श्रेष्ठ, उनके पुत्र हैं लेकिन हैं उनसे श्रेष्ठ। तो इसीलिए सती कहने लगी कि ब्रह्मा जी भी उनका मान करते हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो। तो ये तीसरी शिक्षा वो समझा रही हैं, तीसरी या चौथी, अभी आपकी परीक्षा। कितनी शिक्षा हो गई? पहली शिक्षा क्या थी सती ने दी? कौन हाथ ऊपर कीजिए, किसको याद है? अरे बहुत लोग जगे हुए थे। अमित जी आप बताइए, पहली शिक्षा केवल ज्यादा मत बताइएगा, एक ही, सबको समान देखना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। ओके, दूसरी शिक्षा, यहाँ किसी ने हाथ उठाए थे, दूसरी किसको याद है? यस प्रभु, हाँ, दोष नहीं देखना चाहिए, और हाँ, कोई एक गुणगान हो, कोई एक अच्छा गुण हो तो उसको बढ़ाना चाहिए। ओके, तो आप जब अभी से घर पे जाके खाना खाएं तो याद रखिएगा इस बात। दो हो गई, तीसरी, यस, शिव जी ने शिक्षाएं, शिक्षाएं बताइए, तीसरी शिक्षा क्या? ब्रह्मा जी भी शिव जी का गुणगान करते हैं। इससे पहले कुछ और कहा था, द्वेष, बहुत अच्छा, महान व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, ये तीसरी शिक्षा। ठीक है, तो याद रखिए, पहली शिक्षा, हाँ, आप लोग सब जोर से बोलिए, पहली शिक्षा सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। और कैसे देख सकते हैं? अगर हम सबको, सबके शरीर में आत्मा को देखेंगे, वेरी गुड। दूसरी शिक्षा, किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, और अगर कोई गुण हो तो उसको बढ़ाना चाहिए। ओके, तीसरी शिक्षा, द्वेष नहीं करना चाहिए महान व्यक्तियों के साथ। वैसे और एक शिक्षा है, मोबाइल बंद करके आना चाहिए मंदिर में। चौथी शिक्षा, सती देवी ने नहीं कहा, हम कह रहे हैं समाचार, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल यूज नहीं कर रहा था, तो नहीं तो सती देवी उस पर भी बहुत कुछ प्रवचन देती और शायद आज हम उसको दोहराते। लेकिन ओके, और चौथी शिक्षा, हम शिक्षा क्या है? ये तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी भी इनका गुणगान करते हैं, शिक्षा क्या है इससे? जैसे पहले तीन शिक्षाएं हुई, ये चौथी क्या? हाँ नहीं, वो पहला हो गया, तीसरी हो गई। हाँ वैराग्य नहीं, अभी हमने बताई नहीं है, लेकिन आप लोग गेस कीजिए चौथी क्या शिक्षा है। सती ने कहा कि शिव जी को तुम कहते हो कि वो राख लगाकर घूम रहे हैं, गले में ऐसे हार डालकर घूमते हैं, जानते हो ब्रह्मा जी भी उनका गुणगान करते हैं, इससे क्या शिक्षा दे रही है चौथी शिक्षा सती की? हाँ व्यक्ति की बाहरी स्थिति को नहीं देखना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये क्या शिक्षा है कि हमें व्यक्ति की बाहरी स्थिति को नहीं देखना है, उसके हृदय के भक्ति को देखना है, उसके गुणों को देखना है। और ऐसा कार्य केवल महान व्यक्ति कर सकते हैं। क्यों ब्रह्मा जी का नाम लिया? कि ब्रह्मा जी शिव जी के गुणों को देखकर उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी उनके बाहरी लक्षणों को नहीं देखते। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो ये चौथी शिक्षा है सती की, बाहरी लक्षण नहीं देखना है। प्रभुपाद समझाते हैं उपदेशामृत में कि जब प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया, अमेरिका में गए, अमेरिकन शिष्य बनाए, अमेरिका के लोगों को संन्यास दिया, फिर वो सन्यासी बनाकर यहां लेकर आए, तो भारत में लोग कहने लगे ये अमेरिका के सन्यासी हैं, इनको हम नहीं स्वीकार करते हैं, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक नहीं है, वैष्णव इसको जाति से नहीं देखा जाता। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें कहा गया कि अगर वैष्णव को जाति बुद्धि से देखा गया तो वो नरक जाने का कारण बनती है, अगर हम किसी वैष्णव को बाहरी दृष्टि से देखते हैं। तो सती देवी बहुत महत्वपूर्ण ये चौथी शिक्षा दे रही है कि हमें किसी को बाहरी दृष्टि से, बाहर से कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं देखना चाहिए? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा है, क्योंकि भगवान के भक्त क्यों क्या करते हैं किसी को नहीं पता। अभी शिव जी का ही उदाहरण लीजिए, जब पहले यज्ञ में दक्ष आए थे तो अगर उठकर वो प्रणाम कर देते कौन सी बड़ी बात हो जाती? उनके ससुर हैं दक्ष, अगर प्रणाम कर देते शिव जी तो क्या बड़ी बात हो जाती? लेकिन शिव जी उठे नहीं, तो क्या अपमान की दृष्टि से नहीं उठे? किस दृष्टि से, ये हम नहीं जानते, ये नहीं पता, लेकिन शिव जी उठे नहीं। लेकिन उठे नहीं उनको देखकर अपमान मानना ये गलत है। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा, वैष्णव कब क्या करते हैं कुछ नहीं पता। शिव जी ने क्यों नहीं उठे? सब उठ रहे हैं, शिव जी भी उठ जाते, भाई मेरे ससुर आ रहे हैं, ठीक है उठ के मान सम्मान दे दी, हरे कृष्ण तो बोल देते कम से कम। दक्ष ने यह भी कहा था, जब दक्ष उनका उनके बारे में कह रहा था तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने उठकर खड़े होना तो छोड़ो, एक बार कुछ अभिनंदन भी नहीं किया, मतलब हरे कृष्णा भी नहीं बोला, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भी नहीं कहा शिव जी ने। तो ऐसा क्या हो गया? अब पता नहीं, वो शिव जी जाने। तो इसलिए बाहरी लक्षणों से हमें किसी भक्त के आंतरिक गुणों को या उसकी भक्ति को या उसके चरित्र को नहीं देखना चाहिए। बाहर से तो व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र में जिसमें लिखा गया है मूर्खो पिशोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टितः, यावत च शोभते मूर्खो तावत च शोभते मूर्खो यावत किंचित न भाषसे। बहुत सुंदर श्लोक है, आपको समझ में आ गया? बड़ा सरल है। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? ओके हम समझाते हैं। मूर्खोपि शोभते तावत, मूर्ख व्यक्ति की शोभा तब तक होती है, सभायाम वस्त्र वेष्टितः, सभा में जब तक वो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बैठा हुआ है, तावत च शोभते मूर्खो, मूर्ख की शोभा तभी तक रहती है कब, यावत किंचित न भाषसे, जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही बोलता है पता चल जाता है, भाई बस ठीक है तुम बैठ जाओ, अच्छा बैठे ही रहो। तो मतलब बाहरी दृष्टि से बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया है, साफ सुथरे कोट टाई ये वो, लग रहा अरे बड़ा विद्वान होगा, और जब उससे कुछ बातचीत की तो पता चला कि उसको कुछ पता ही नहीं है। समझ लीजिए वो वैज्ञानिकों की सभा में आ गया, कोट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, कोई भी देखकर कहेगा बड़ा बड़ा वैज्ञानिक होगा। तो उसको जाके किसी ने पूछा एटम के बारे में आपका क्या कहना है, बोले मेरे बच्चे का नाम तो एटम है ही नहीं। क्या बोले क्या बात कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं एटम क्या होता है, वैज्ञानिकों की सभा में आ गया है ना। तो इसीलिए जैसे ही मुंह खोला पता चल गया तो फिर लोग कहेंगे अच्छा ठीक है आप बैठो कुछ खाओ पियो और चले जाना, ठीक है कुछ बोलना नहीं। तो इसलिए बाहरी दृष्टि से हम किसी को पहचान नहीं सकते। इसी तरह जैसे मूर्ख बोलने पर पहचाना जाता है लेकिन भक्त की भक्ति उसको पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए सती देवी यहां समझा रही हैं कि तुम बाहरी लक्षणों पर जाकर आपने मेरे पति का अपमान कर दिया, लेकिन देखिए कितने महान लोग उनका गुणगान करते हैं। तो दूसरे शब्दों में क्या बता रही है, बाहरी मत देखिए उनके गुणों को देखिए जिसका गुणगान सारे संसार में होता है। इसी तरह जब हम भक्तों में आपस में मिलते हैं, आपस में संबंध बढ़ाते हैं, तो हमें बाहरी नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति इस समाज से है तो मैं फिर इसके साथ रहूंगा, इस व्यक्ति का शरीर इस जाति में आया है, ये मेरे ये मेरा उड़ीसा वाला है, ये मेरा बंगाल वाला है, ये मेरा कारवार वाला है, ये मेरा जो भी कर्नाटक वाला है, कुछ नहीं, ये मेरा कृष्ण वाला है, बस इतना सोचना चाहिए। वही एक गांव है, हम सबका एक ही गांव है गोलोक वृंदावन, हम सबके एक ही स्वामी है कृष्ण, इसीलिए हम सबको यही सोचना चाहिए कि ये गोलोक वाला है, मेरे गांव वाला है ना। लेकिन हम लोग इस तरह तो बाहरी दृष्टि से कभी भेद नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा अपराध है। हो सकता है उसकी भाषा ठीक ना हो, हो सकता है उसका शरीर ठीक ना हो, कुरूप हो वो, या शरीर में कोई दोष हो उसके, हो सकता है कि उसकी उसका पहनावा ठीक ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ये सब नहीं देखते हैं। क्या भगवान देखते हैं, आज आप सब लोग आए हैं तो क्या भगवान ये देख रहे हैं कि कौन अच्छे कपड़े पहनकर आया, बहुत अच्छा भक्त है तुम आगे आ जाओ, और कौन थोड़े ठीक कपड़े पहन के नहीं जाओ बाहर, देखूंगा भी नहीं तुम्हारी तरह। भगवान को क्या लेना देना है। या भगवान ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति आकर बड़ी अच्छी तरह श्रवण कर रहा है और कौन व्यक्ति बिल्कुल श्रवण नहीं कर रहा, आकर केवल बैठा ये सोच रहा है कब ये प्रवचन समाप्त हो, कब मैं खाना खाऊं और कब वापस जाऊं, कब मुझे छुटकारा मिले इस माया जाल से। भगवान ये देख रहे हैं। भगवान भक्ति देखते हैं हृदय में, इसीलिए उनको भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। भगवान हमारे शब्दों को नहीं देखते, भावों को देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर रहा है, भगवान देखते हैं इस प्रार्थना के पीछे इसका भाव क्या है। भले इसने टूटे फूटे शब्द बोले लेकिन अगर अच्छे भाव से बोले तो वो मेरा महान भक्त है, ये देखते हैं भगवान। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर आकर खड़ा होकर भगवान के सामने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक शास्त्रों को बोलना, वेदों को उपनिषदों को बोलना शुरू करे, पुरुष सूक्त गाए बड़े अच्छे मीटर में, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, बहुत बढ़िया। और दूसरा एक भक्त उसको कुछ नहीं पता और वो खड़ा होकर बड़े हृदय से केवल इतना ही बोले, भगवान मुझे कुछ मालूम नहीं आपको क्या बोलना है, आप ही बताइए, आप ही शक्ति दीजिए और आप उसको स्वीकार कर लीजिए, बस इतना बोले, कौन प्रिय है भगवान को। भगवान के सामने जब बड़े बड़े श्लोक बोले जाते हैं उपनिषदों के, बड़े अच्छे लय में छंद में, भगवान ध्यान भी नहीं देते। लेकिन दूसरी ओर गोपियां उनको गाली देकर बुलाती हैं, व्रजवासी भगवान भाग कर जाते हैं उधर। ये प्रेम है, क्योंकि उनका प्रेम है। वो जब भगवान को बुलाती हैं चाहे कैसे भी, जैसे जब कृष्ण छोटे थे तो गोपियां क्या करती थी, गोपियां कहती थी तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, पहले नाच के दिखाओ, मक्खन दूंगी। कौन है कृष्ण, सारे जगत को ऐसे नचाते हैं उंगलियों पर, हा? उंगलियों पर भी नहीं, इच्छा मात्र से सारा ब्रह्मांड चलता है उनके, और वो थोड़े से मक्खन के लिए नाचने लगते थे, छोटे से बच्चे गोपी नाचोगे तो मिलेगा, वो नाच रहे हैं। अच्छा ठीक है ये ले लो, अच्छा थोड़ा गा के सुनाओ। नंद महाराज जाओ मेरी चप्पल उठाकर लेकर आओ, जा रहे हैं और सर पे अपनी चप्पल रख के नंद महाराज की ला रहे, ये भगवान है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो भ्रमित हो गए, हम लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, क्या देखा ब्रह्मा जी ने, बच्चे बैठे हुए हैं पिकनिक मना रहे हैं, सबने अपना अपना पोटली खोली, दोपहर का समय हो गया, भूख लग गई 12 बजे। गोलोक वृंदावन में ठीक भगवान 12:10 पे खाते हैं, इसीलिए यहां पर राजभोग 12:10 पे लगना चाहिए। भगवान की जब सेवा हम लोग यहाँ करते हैं ये उसके अनुसार है, वहां भगवान कितने बजे उठते हैं, कितने बजे वन में जाते हैं, तो कितने बजे खाते हैं, ये सब उसके समान। तो भगवान बैठे हैं, सब बालक बैठे हैं, अपनी अपनी पोटली खोली, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्यों देख रहे थे अब बताइए, अरे कोई पृथ्वी पर खा रहे ब्रह्मा जी को देखने की क्या आवश्यकता वहां से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी अभी सुना था कि एक कृष्ण नाम का लड़का है वृंदावन में रहता है, उसने एक सांप को मारा अघासुर, वो सांप असुर था, बहुत पापी था, बड़े बड़े पाप किए थे उसने, और उसको मार दिया। लेकिन मारा और क्या देखा, वो वैकुंठ चला गया, अघासुर असुर वैकुंठ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो परमिशन ही नहीं दी थी, गया कैसे बाहर मेरे ब्रह्मांड से, तो ये हुआ क्या। ब्रह्मा जी को किसी ने बताया, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम, ब्रह्मा जी को सब कुछ मालूम है जो ब्रह्मांड में हो रहा है, लेकिन ये बात उन्हें भी नहीं पता थी कि अघासुर तो वैकुंठ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा मतलब ऐसे हो गया कि मान लीजिए कोई जेल में है और जेलर जेल का रिकॉर्ड रख रहा है, ये कैदी नंबर, ये कैदी नंबर, ये सेल में है, ये जेल में है, और अचानक कोई आकर बोलता है अरे आपके कैद में एक कैदी था, क्या नंबर, हाँ है ना अघासुर, हाँ अरे वो तो प्रधानमंत्री बन गया देश का, है बोले अरे मेरी जेल से बाहर कब गया वो, बोले जेल से बाहर छोड़ो वो प्रधानमंत्री अभी आ रहे, साफ सफाई कराओ जेल की अब मैं। तो ऐसा हो गया ब्रह्मा जी के लिए बड़ा आश्चर्य कि वो वैकुंठ कैसे चला गया, मेरे ब्रह्मांड से बाहर कब निकला, मुझे ही नहीं पता, तो है कौन, किसने भेजा, बोले कृष्ण ने। अरे कृष्ण कौन है, अब जैसे कोई कहे कि जेलर है प्रमुख इंचार्ज, अब उसको आके बोले तुम्हारी जेल का व्यक्ति वो बाहर बैठ के होटल में खाना खा रहा है, हे किसने भेजा, बोले वो दूसरे कैदी ने, बोले अरे तो देख कर तो वो देखने के लिए आए ब्रह्मा जी कि है कौन ये जिसने वैकुंठ भेज दिया अघासुर को, आश्चर्य हो गया ब्रह्मा जी को, तो इसलिए ऊपर से देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी, नीचे बच्चे बैठे हैं 8-10-15-20-25-30 बच्चे बैठे हैं, एक सर्कल बनाकर बैठे हैं आराम से, हर एक ने अपनी अपनी पोटली खोली, देखो कृष्ण मेरे लिए मां ने ये तुम्हारे लिए ये भेजा है मां ने, अच्छा हाँ देखो तो खा रहे हैं, तो एक दूसरे की पोटली से लेकर खा रहे हैं, झूठा, कोई ये नहीं कि भगवान को प्लेट में रखा है घंटी बज रही है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, कुछ नहीं, ऐसे ही खा रहे हैं। और एक आश्चर्य ब्रह्मा जी ने देखा, एक मित्र ने छाछ ली बटर मिल्क, कृष्ण ने कहा पियोगे, कृष्ण ने कहा हाँ, जैसे ही आ गया है वो खुद पी गया पूरी, और उसका मुंह पूरा भर गया और उसने ऐसे गाल फुला लिए, कृष्ण ने कहा अच्छा, जोर से उसके गाल पर मारा ऐसा, और जैसे ही मारा तो पिचकारी की तरह सारा बटर मिल्क मुंह में निकला और कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया वो भी है। ब्रह्मा जी तो बाप रे ये क्या है इसको लोग भगवान कहते हैं, हाँ क्योंकि उन्होंने तो आज तक शास्त्र में यही सुना था भगवान को भोग लगाना साफ सुथरा, फिर वो आसन होना चाहिए, मुद्राएं होनी चाहिए, आइए भगवान बैठिए, फिर घंटी बजनी चाहिए, फिर मंत्रोच्चारण होना चाहिए और फिर भगवान खाते हैं, ये तो सीधा डायरेक्ट मुंह से अंदर, कोई कोई तुलसी नहीं कोई मंत्र नहीं, कोई घंटी नहीं, ये क्या है। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, तो वो देखने के लिए आए। तो जब ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के कार्यों से कि भगवान कैसे कार्य करते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो हम लोग अगर भ्रमित हो जाएं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे कृष्ण लीलाएं करते हैं। तो बाहरी दृष्टि से अगर हम किसी को देखने जाएं, हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे थे हम फिर भूल गए, ये कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, इतनी मधुर हैं, जब उसमें जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है कि क्या। अब आप बताइए, आप लोग तो शायद यहीं पर थे, वृंदावन पहुंच गए थे कि यहां आ गए, यहां है। तो हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे थे, किसी को याद है? हाँ जी, बाहरी दृष्टि, लेकिन कृष्ण की कथा क्यों आ गई? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, शिव जी का गुणगान करते हैं, लेकिन ये कथा क्यों कही हमने, अगस्त्य की कथा क्यों कही? हम भी भ्रमित हो गए। अच्छा, ये बोल रहे हैं आप भी भ्रमित हो गए इसीलिए। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर, जो भी बात हो, हम लोग फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। हमें नहीं पता हम क्यों अगस्त्य की कथा पे चले गए, क्या पॉइंट था, क्या विषय था, हम भूल गए, भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे तुम मेरा भ्रमित करते हो, अभी तुम्हें दिखाता हूं। वो ऊपर से कुछ उन्होंने कर दिया। तो ब्रह्मा जी भी जिसका गुणगान करते हैं, जिन शिव जी का आपने उनका अपमान किया है, और वो भी केवल बाहरी चीजों से। तो इसलिए ऐसे ये तो भक्ति की हम बात कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते, इसलिए ये बात आई थी। ब्रह्मा जी को भी भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान ऐसा प्रेम, ऐसे भगवान हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को वेदों के शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब गोपियां कुछ कहती हैं तो वो राइट। देखिए, आप सबको भी याद, ब्रह्मा जी किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी क्षमा मांग लेते हैं कुछ को। तो कृष्ण को ये पसंद है, और इसीलिए कृष्ण को उनके भक्त पसंद हैं। कृष्ण को ये पसंद नहीं कि कोई आके बहुत बड़ा बड़ा गुणगान करे। तो बाहरी दृष्टि पसंद नहीं है कृष्ण को, ये चर्चा थी। कृष्ण को हृदय पसंद है, कृष्ण को भाव प्रिय है, कृष्ण को भक्ति प्रिय है, इसीलिए उनको भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। तो जब कृष्ण व्यक्ति के भाव को देखते हैं, जब कृष्ण गुणों को देखते हैं, तो हमें बाहरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो इसीलिए सती देवी समझा रही हैं, चौथी की पांचवी शिक्षा है। कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पहली शिक्षा क्या है? आज आपके वापस जाने तक चार शिक्षा याद होना ही होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं। ओके, पहली शिक्षा, सॉरी सुनाई नहीं दी, हाँ, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे अमेरिका का हो, लंदन का हो, यूरोप का हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, किसी शरीर में हो, सबको समान। कैसे देख सकते हैं समान? आत्मा के, वेरी गुड। दूसरा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, दोष नहीं देखना चाहिए। तो अगली बार आप किसी के घर पे जाएं और उसने दीवार पेंट की हो तो क्या क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा पेंट किया है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। या फिर कभी आप किसी के घर पे खाना खाने जाओ और नमक ज्यादा हो तो क्या कहोगे? घर पे तो आप कहते ही हो, प्रभु जी ने बता ही दिया, बोल ही नहीं सकते कि खराब बना है, नहीं तो अगले दिन से हड़ताल और फिर जाओ जहां खाना है खा लो, फिर तो होगा नहीं। और तो ये दूसरी चीज, तो हमें केवल दोष देखना बंद करना है या और कुछ कहा सती देवी ने? अच्छे गुण देखकर उसको बढ़ाना है, तो ये दूसरा। तीसरी शिक्षा, द्वेष किसी महान व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। दूसरों से कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, द्वेष करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चौथी शिक्षा, पूरा नहीं बोलते लोग, बाहरी बाहरी बस खत्म हो गया, पूरा तो बोलिए क्या। चौथी शिक्षा क्या है? हमें केवल बाहरी सुनाई दिए, बाकी आगे सब बंद हो गए। हाँ, व्यक्ति को बाहरी लक्षणों से नहीं देखना है, उसके शरीर से, उसके कुछ भी हो सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, कोई रंग ना हो, जो भी हो, ऐसा तो नहीं होगा कोई रंग, लेकिन जो भी हो, हमें नहीं देखना, उसके गुणों को देखना है, क्योंकि व्यक्ति की सुंदरता उसके गुणों से होती है, शरीर से नहीं, बाहरी नहीं। ये जो बाहरी सौंदर्य है, ये कितने समय का है? हां जी, 20 साल, चलिए 20 साल तक तो रहता है कम से कम। हमने सोचा और थोड़ा कम हो गया होगा अभी, लेकिन प्रभु जी कह रहे अभी तक 20 साल तक है। ठीक है, बाहरी सौंदर्य 20 साल, उसके बाद, लेकिन अंदर का सौंदर्य, गुणों का सौंदर्य, भक्ति का सौंदर्य, ये कब तक रहता है? कितने साल? हाँ, शाश्वत रहता है, मृत्यु पे भी समाप्त नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। आज आपने भक्ति का 25% सौंदर्य प्राप्त किया, अगले जन्म में 26 से शुरू होगा, फिर ऐसे बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। इसीलिए भक्ति महत्वपूर्ण है। तो हमें व्यक्ति को कभी भी शरीर से नहीं देखना चाहिए, उसके गुणों से, उसके भक्ति से देखना चाहिए। अन्यथा क्या होता है? वैष्णव अपराध, उसे वैष्णव अपराध कहते हैं। अगर हम किसी भक्त को किसी बाहरी दृष्टि से देख लेते हैं, हम उसको बाहरी, उसके उसके बाहरी लक्षणों से उसकी उसको जज करने लगते हैं, तो वैष्णव अपराध होता है, और यह बहुत खतरनाक अपराध है, वैष्णव अपराध। पिछली बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम इसको इस वैष्णव अपराध को शरीर के स्तर पर ना करें, क्योंकि शरीर ये किसकी संपत्ति है? सती देवी अपने शरीर को समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि वे दक्ष की पुत्री हैं। अर्थात वो क्या कह रही थी कि शरीर किसका है? दक्ष का। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, ये शरीर किसका है? किसका है शरीर? क्या उन मां बाप का जिन्होंने शरीर दिया, ये शरीर उनका है? अगर उनका है तो मृत्यु के बाद अग्नि में क्यों चला जाता है? तो क्या अग्नि का है? क्या उन प्राणियों का है जो उसको नोच नोच कर खाते हैं? क्या प्रकृति का है जिसमें ये मिल जाता है? क्या गुरु का है जिसको समर्पण किया जाता है? किसका शरीर है ये? पंच महाभूत से तो बना है, लेकिन है किसका? उन्हीं का है, प्रकृति का है। माता पिता का कोई अधिकार नहीं? आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। माता पिता का कोई अधिकार नहीं? आप सबके बच्चे हैं ना छोटे, कोई अधिकार है कि नहीं उसके ऊपर आपका? फिर आप कह रहे हो कि शरीर उनका नहीं है, पंच महाभूत। आप अपने बच्चे को देखते हो ऐसे, ये पंच महाभूत से बना हुआ देखते हो ऐसे? अभी अभी हमने कहा कि शरीर किसका है? पंच महाभूत से बना। देखते हो आप अपने बच्चे को? हाँ, कर्मों से। अच्छा, कर्मों का शरीर है, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसका शरीर। और हाँ जी, परमात्मा का है, तन मन धन सब तेरा। आप देते हो परमात्मा को? दिया आपने? अभी तक नहीं दिया। जब मानते हो परमात्मा का, तो दो परमात्मा को क्यों रखा हुआ है उसकी संपत्ति आपने? ये भी ठीक है, चलिए ये भी उत्तर सही है। परमात्मा का, कर्म का, माता जी ने कहा पंच महाभूत का, और सही है वैसे, परमात्मा का संपत्ति सारी। हमने शुरुआत में कहा ना सब कुछ कृष्ण का है, तो उन्होंने उसको ही कह दिया, वही ठीक है। तो ये भी उत्तर ठीक है, ये भी उत्तर ठीक है, ये भी उत्तर ठीक है। और कोई उत्तर? शरीर किसका? ये प्रश्न नारद मुनि ने किया और उसका उत्तर दिया कि ये शरीर किसका है, और ये वर्णन वो करते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहां नल कुंवर और मणिग्रीव की कथा आती है। तो वहां उन्होंने इसको वर्णन किया कि ये शरीर किसका है, और बहुत सारे उन्होंने दिए, माता पिता का है, गुरु का है, प्रकृति का है, जैसे इन्होंने कहा कि पांच महाभूत, प्रकृति का है, उन कुत्तों का है जो खा जाते हैं, अग्नि का है जो ले लेती है, किसका है ये शरीर? और उसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, और ये उत्तर हम लोग अगले रविवार को सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सती की शिक्षाओं में से कितनी हुई हैं? 4, 10 हैं। आगे अगले आने वाले रविवारों में